दीवा सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी को फिर से ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रही थी। अगली सुबह हॉस्पिटल में सर्जरी निपटाने के बाद दीवा अपनी केबिन की ओर बढ़ रही थी, तभी उसने दो लोगों की बातचीत अनजाने में सुन ली। वो दो लोग कोई और नहीं, आर्यांश कपूर और उसका मैनेजर सार्थक खन्ना थे। उनकी बात सुनकर दीवा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वो किसी सौरव बजाज को मारने की बात कर रहे थे। दीवा के कदम वहीं जम गए। वहीं सौरव बजाज को मारने की बात सुनते ही सार्थक खन्ना ने हड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन मैंने मारने का नहीं सोचा था। ये ज्यादा नहीं हो गया? वो आपके सगे मामा हैं, ऊपर से आपकी मॉम उनके बिना पागल हो जाएंगी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो वो तूफान ले आएंगी। उसके साथ जो भी हो रहा है वो वही डिजर्व करता है। हमारी कंपनी में काम करते हुए वो हमारे पैसे में घोटाला कर रहा था। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, सब कुछ बहुत सावधानी से होगा। ऊपर से वो हॉस्पिटल में है तो कोई हमारे बारे में सोच भी नहीं पाएगा कि ये हमने किया है। सारा इल्ज़ाम तो उस डॉक्टर पर जाएगा जो उसका इलाज कर रहा है, आर्यांश ने सिर हिलाकर कहा। दीवा को यकीन नहीं हो रहा था कि आर्यांश ऐसा कुछ कर सकता है। हालांकि उसने उसके बारे में काफ़ी कुछ सुना था। अब तक वो उसके लिए एक बिगड़ा हुआ अमीर बिजनेसमैन के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ तो वो सीधे सीधे किसी को मारने की प्लानिंग कर रहा था। अचानक दीवा के दिमाग में कुछ स्ट्राइक हुआ। उसने धीमी आवाज़ में खुद से कहा, मुझे ये सौरव बजाज नाम इतना सुना हुआ क्यों लग रहा है? कौन है ये? मुझे याद करना ही होगा और मुझे उसे बचाना होगा। दीवा वहां अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी उसका पैर नीचे रखे एक वास से जा टकराया। हालांकि दीवा अभी भी उथेड़बुन में खोई हुई थी, सौरव बजाज नाम के शख्स को याद करने की कोशिश कर रही थी। इस चक्कर में उसका ध्यान नहीं गया। वहीं आवाज़ सुनकर आर्यांश और सार्थक अलर्ट हो गए थे। आर्यांश ने तेज और सख्त आवाज़ में कहा, कौन है वहां? आर्यांश की आवाज़ सुनते ही दीवा का ध्यान टूट गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। वो कुछ कर पाती उससे पहले ही आर्यांश उसके सामने आ गया था और उसे घूरते हुए देख रहा था। दीवा का मन कर रहा था कि वो कहीं जाकर मर जाए। दो दिन पहले जब वो आर्यांश से मिली थी तब उसने यही कहा था कि वो कभी गलती से भी नहीं टकराएंगे। अब वो वहां खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी। दीवा ने नर्वस चेहरे के साथ आर्यांश के चेहरे की ओर देखा, जिसके चेहरे के भाव काफी सख्त थे। दीवा ने जल्दी से सिर हिलाकर हड़बड़ाते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं सुना। आर्यांश ने देखा दीवा ने बिना कुछ पूछे ही उसे अपनी सफाई दे दी थी। ये देखकर आर्यांश के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। दीवा की बातों ने खुद ही साबित कर दिया था कि वो उनकी बातें सुन चुकी है। दीवा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। इस वक्त उसे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। दीवा ने मन ही मन बड़बड़ा कर कहा, ओह नो, मेरी किस्मत इतनी बुरी कैसे हो सकती है? ये आदमी फिर से मेरे सामने आ गया और मैं इससे बात क्यों कर रही हूँ? दीवा अपने ख्यालों में खोई हुई थी, तभी आर्यांश ने उसके सामने चुटकी बजाई। दीवा का ध्यान टूटा तो वो हड़बड़ाकर बोली, मुझे कुछ काम है। इतना कहकर दीवा जाने लगी, तभी आर्यांश उसके सामने आ गया था। वो इस वक्त हॉस्पिटल के 15वें फ्लोर पर थी। मुंबई का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल होने की वजह से ये काफ़ी लग्जूरियस और हर एक सिक्योरिटी से लैस था। फिर भी न जाने क्यों दीवा को वहां आर्यांश के सामने डर लग रहा था। शायद उसका ऑरा ही ऐसा था। आर्यांश ने अपनी गर्दन केढ़ी की और दीवा की आंखों में देखते हुए पूछा, तुम यहाँ डॉक्टर हो? आर्यांश ने बस ऐसे ही उसे पूछ लिया, जबकि वो उसके बारे में सब कुछ पहले ही पता लगा चुका था। नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, दीवा ने जवाब दिया। वो नहीं चाहती थी कि आर्यांश उसके पीछे पीछे हॉस्पिटल में आने लगे। अगर तुम डॉक्टर नहीं हो तो ये व्हाइट कोट तुमने फैशन शो में जाने के लिए पहना है, आर्यांश ने सार्कास्टिकली कहा। हाँ, फैशन शो में जाने के लिए ही पहना है, मैं एक मॉडल हूँ, दीवा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। वो अंदर से घबराई हुई थी, लेकिन उसने अपने चेहरे से कहीं भी ये जाहिर नहीं होने दिया। अगर आर्यांश दीवा से थोड़े और सवाल जवाब करता तो शायद वो पकड़ी जाती, यही सोचकर दीवा वहां से जाने लगी। तभी आर्यांश ने उसके कंधों को कसकर मजबूती से पकड़ लिया था। अगर आर्यांश उसे नॉर्मली पकड़ता तो बात अलग थी, पर इस वक्त उसने गुस्से में उसे काफी टाइटली पकड़ रखा था। दीवा की आंखें नम होने लगी थीं। आर्यांश ने दीवा की आंखों में देखते हुए सर्द आवाज में कहा, बेवकूफ लगता हूं मैं तुम्हें, चलो अब सीधे सीधे बताओ क्या सुना तुमने? आर्यांश ने गुस्से में गहरी सांस ली और फिर आगे कहा, मुझे सख्त चिढ़ है जब लोग मुंह पर झूठ बोलते हुए खुद को मासूम दिखाने की कोशिश करते हैं। तुम मुझे डरा रहे हो, मैंने कहा ना मैंने कुछ नहीं सुना, मैं बस यहां से गुजर रही थी और मेरा पैर इस वास से टकरा दिया, दीवा ने कांपती आवाज में कहा। दीवा मासूमियत से उसकी तरफ देखने लगी ताकि आर्यांश उस पर यकीन कर ले। वो मन ही मन बोली, अब तो तुम मेरी जान भी ले लोगे, तब भी मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगी कि मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं। अगर मैंने सच एक्सेप्ट कर लिया तो मैं उस इंसान को कभी नहीं बचा पाऊंगी। दीवा की बात सुनते ही आर्यांश ने उसे एक झटके में छोड़ दिया था, जिससे वो कुछ कदम लड़खड़ा गई। आर्यांश ने उसकी तरफ घूर कर देखते हुए कहा, ठीक है तुमने कुछ नहीं सुना, लेकिन अगर मुझे तुम्हारे सच का पता चला तो उसके बाद मुझे दोष मत देना कि तुम्हारे साथ क्या हो गया। वैसे भी हम अजनबी हैं, और जो अजनबी मेरी बातें सुनता है और मेरे खिलाफ एक्शन लेने का सोचता है, मैं उसका बहुत बुरा हाल करता हूँ। आर्यांश की बातें दीवा को डरा रही थी। उसने मुठ्ठियां कसकर बंद कर ली और खुद की आवाज को सख्त करके कहा, ये हॉस्पिटल है और तुम मुझे खुलेआम धमकी नहीं दे सकते हो। तुम्हारे इस हॉस्पिटल को मैं शाम तक खरीद कर बंद भी करवा सकता हूँ। आगे तुम्हें कुछ कहना है मिस दीवा गोयनका? आर्यांश ने भौहें चढ़ाकर कहा। अगर तुम इतने ही अमीर और पावरफुल हो तो यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? तुम्हें बस बड़ी बड़ी बातें करना आता है, अपना काम करो ना, बिजी लोगों के पास टाइम नहीं होता है, दीवा ने धीमी आवाज में जल्दी जल्दी बोलते हुए जवाब दिया। तुम मुझ पर सवाल उठा रही हो? आर्यांश उसके करीब बढ़ते हुए बोला तो दीवा जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गई। मैं तुम पर कोई सवाल नहीं उठा रही हूँ, पर तुम इस तरह मुझे डरा धमका नहीं सकते हो, दीवा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अच्छा तो मैं तुम्हें डरा धमका रहा हूँ, चलो फिर अच्छे से बताते हैं कि डराया और धमकाया कैसे जाता है। आर्यांश आगे बढ़ा और अपना हाथ उठाकर दीवा की गर्दन की तरफ बढ़ाने लगा। तभी दीवा के चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। दीवा ने जल्दी से अपना हाथ उठाया और वहां लगे कैमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तुमने कुछ भी किया तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा। कैमरे का जिक्र सुनते ही आर्यांश ने अपने हाथ नीचे कर दिए थे। वो खुलेआम ऐसे ही किसी डॉक्टर पर हमला नहीं कर सकता था। तो तुम मुझे कैमरे का नाम लेकर डरा रही हो? तुम्हें मुझसे दुश्मनी मोल लेनी है दीवा गोयनका? आर्यांश ने भौहें चढ़ाकर पूछा। दीवा ने जल्दी से नामे सिर हिला दिया था। वो तो उससे बचने की कोशिश कर रही थी, वो क्यों आर्यांश से दुश्मनी मोल लेगी? दीवा ने गहरी सांस ली और कहा, देखिए मिस्टर कपूर, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने कहा ना मैंने आपकी कोई बात नहीं सुनी है, तो प्लीज मुझे जाने दीजिए। बिल्कुल तुम्हें ऐसे ही बिहेव करना है, अगर तुमने कुछ सुना भी है तो सबको यही बताना है कि तुमने कुछ नहीं सुना, एक बार फिर से मेरे रास्ते में आई तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, आर्यांश ने सर्द आवाज में कहा और फिर सार्थक को अपने साथ आने का इशारा किया। आखिरकार आर्यांश ने ईवा का छोड़ दिया था तो वो भागते हुए अपने केबिन की ओर जाने लगी। उसकी ये हरकत देखकर आर्यांश के चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल आ गई थी।
वहीं दीवा, जो आर्यांश से मुश्किल से बचकर निकली थी, अब उसे सौरभ बजाज को ढूंढकर उसे भी बचाना था। अगर दीवा ने आर्यांश से पंगा लेते हुए सौरभ बजाज को बचाने की कोशिश की तो पक्का वो आर्यांश की नज़रों में आ जाएगी। देखते हैं क्या होता है। वैसे दीवा ने एक बार ही कहा था कि हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, और आर्यांश ने उसे ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया। खैर कोई नहीं, अगले पार्ट पर मिलते हैं। पढ़कर रेटिंग और कमेंट किया करो।